नमस्करोमि मित्रगणाः, अद्य पुनरपि आगच्छति रविवासरः, आगच्छति अस्माकं पठामि संस्कृतं कार्यक्रमस्य वेलाम्। अद्य वयं भगवद्गीतायां तृतीयम् अध्यायं पठाम। अहं प्रारम्भं करोमि। अपरे वयं पठितवन्तः यत् भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनम् उपदेशम् अकरोत्। सः कथितवान् यत् सर्वे जनाः आत्मसंतुष्टिं प्राप्तुं न शक्नुवन्ति, तस्मात् कार्यम् एव करणीयम्। किन्तु तत्रापि कार्यमग्नता तथा च कार्यकुशलता अतीव प्राप्तव्या, अनासक्तभावः अपि वरणीयः। अर्थात् हे मित्रगण, नमस्कार। आज फिर से रविवार है और फिर से हमारे पठामी संस्कृतम कार्यक्रम की वेला आ पहुंची। तो आज भी हम भगवद्गीता के तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे और मैं प्रारंभ करूंगी इसके 24वें श्लोक से। पहले हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और उस उपदेश में कहा कि सभी जन आत्मसंतुष्टि को नहीं पा सकते। केवल कोई कोई ही लोग ऐसे होते हैं जो आत्मसंतुष्टि या आत्मा के विषय में ही अपना पूरा ध्यान लगा करके संतुष्ट होते हैं, किंतु सबके लिए यह संभव नहीं है। इसलिए तस्मात् कार्यम एव करणीयम्, इसलिए बाकी सबके लिए यही उचित है कि अपने कर्म अपने कर्तव्य करते रहें और वह करते हुए भी कार्यमग्नता और कार्यकुशलता दोनों ही पाना बहुत आवश्यक है। साथ ही अनासक्त भाव भी वरणीय है, अर्थात अनासक्त भाव भी रखना अच्छा है। तो मित्रों, इसके आगे आज हम आरंभ करते हैं। और मैं याद दिला दूं कि पिछली श्रृंखला में हमने पढ़ा कि पहले भगवान श्री कृष्ण ने राजा जनक का उदाहरण दिया कि कैसे अनासक्त भाव से वे कर्म करते रहे और जो भी कर्मफल था उसे समाज के प्रति मोड़ करके लोक संग्रह करते रहे। फिर स्वयं का उदाहरण देते हुए भगवान ने कहा कि मैं भी कर्म करता रहता हूँ, कर्म में मन लगा करके कुशलतापूर्वक कर्म करता हूँ, ताकि मैं सामान्य जनों के सम्मुख एक अच्छा उदाहरण रख सकूँ। भगवान ने कहा कि यदि मैं इस तरह आचरण ना करूँ तो बाकी लोग भी जो मेरा देखा देखी आचरण करने वाले हैं वे कर्म से विमुख हो जाएंगे। इसलिए उनकी कर्म में रुचि बनी रहे, उनकी कर्म में रति बनी रहे, गति बनी रहे, कुशलता बनी रहे, इसलिए मैं भी कर्म करता रहता हूँ। तो आगे भगवान कहते हैं, उत्सिदेयुरि मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः। न कुर्यां कर्म चेदहं, यदि मैंने कर्म नहीं किया, अगर मैं कर्म से विमुख हो गया तो क्या होगा? उत्सिदेयुरि मे लोका, ये सभी जो लोक हैं और इस लोक में जितने भी प्राणी मात्र बसते हैं उनके सम्मुख मैं एक गलत उदाहरण रखूंगा और उनके लिए एक विनाश की गति आ जाएगी जिसके लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा। उत्सिदेयु, मेरे कारण, मेरा देखा देखी करते रहने के कारण वे विनाश की तरफ ढकेले जाएंगे, क्योंकि कर्म अगर कुशलतापूर्वक ना किया जाए तो वह समाज को उन्नति की तरफ नहीं ले जा सकता, समाज उत्कर्ष को नहीं पहुंच पाता, समाज विनाश की तरफ झुकता है। इसलिए समाज के और लोगों के विनाश का मैं कारण बनूंगा। और साथ ही क्या होगा? संकरस्य च कर्ता स्याम, मैं संकर का कारण बनूंगा, संकर का कर्ता बनूंगा। और उपहन्याम इमाः प्रजाः, और इस प्रकार इस सारी प्रजा का, इस सारी सृष्टि का नाश करने में मैं कारण बन जाऊंगा। तो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया है, संकर। संकरस्य च कर्ता स्याम, अर्थात मैं संकर करने वाला बन जाऊंगा। संकर अर्थात कई चीज़ों को गुड़मुड़ मिला देने पर फिर उसमें से कोई भी उपयोगी वस्तु निकालना मुश्किल हो जाता है। सारी चीज़ें एक दूसरे में मिल जाती हैं और गड़मड़ हो जाती हैं, अलग अलग उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, तो उस स्थिति को कहते हैं संकर। और मित्रों ये बता दूं कि मेरे पिताजी ने खास तौर से इस श्लोक के प्रति मेरा ध्यान दिलाया था और उन्होंने कहा था कि पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि जब बहुत सारे लोग युद्ध में मारे जाएंगे और हमारे घर की स्त्रियाएं विधवा हो जाएंगी, फिर उसके कारण समाज में वर्ण संकर फैलेगा, तो यहाँ भगवान ने ये कहा है कि सही अर्थ में वह संकर नहीं है। संकर तब होगा सही अर्थ में जब समाज अपनी कार्यकुशलता को भूल करके जैसे तैसे रहने के लिए बाध्य हो जाएगा, चलता है का रुख अपना लेगा, तब संकर होगा। और मैं उसका कारण नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं अपने कर्मों को कुशलतापूर्वक करने में ही मैं अच्छाई मानता हूँ, ताकि मैं लोगों के सम्मुख एक अच्छा उदाहरण रख सकूँ। भगवान आगे कहते हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षुर लोक संग्रहम। कुछ लोग जो कि अविद्वांसः यानी अधिक सूझबूझ वाले नहीं हैं, अधिक सोच विचार नहीं कर पाते, वे कर्म के प्रति आसक्त होकर के काम करते हैं और कई बार हम देखते हैं कि कर्मफल में भी आसक्ति होने के कारण वे अच्छा काम निभा लेते हैं। यथा कुर्वन्ति भारत, वे अच्छा काम निभा लेते हैं। उसी प्रकार कुर्याद विद्वांस तथा सक्ता, जो विद्वान लोग हैं, सोच विचार करने वाले लोग हैं, वे असक्त रह करके भी उसी प्रकार अच्छा कुशल कार्य कर लेते हैं। तो जो कर्मफल में आसक्ति रख करके अच्छा काम करेगा, तो उस कर्मफल को केवल स्वयं के लिए रखने की उसकी प्रवृत्ति होगी। लेकिन जब एक विद्वान व्यक्ति, एक सोच विचार सूझबूझ रखने वाला व्यक्ति कर्मफल की ओर अनासक्त रह करके अच्छा काम करेगा, तब वह चिकीर्षुर लोक संग्रहम, फिर वह लोक संग्रह की इच्छा रखेगा और वह लोक संग्रह कर भी पाएगा, क्योंकि वह अपने कर्म के फल को समाज की तरफ मोड़ सकेगा। तो यहाँ फिर हम देखते हैं कि चार बातें संभव हैं। एक तो सूझबूझ वाला व्यक्ति समाज की उन्नति की चिंता रखता है, ऐसा व्यक्ति, परंतु वह अपने कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं करे, ये भी संभव है, क्योंकि वो सोच सकता है कि अगर मैं कर्मफल में आसक्ति मुझे नहीं चाहिए, तो फिर काम को जैसे तैसे निपटा दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है। दूसरी श्रेणी उसकी है जो समाज की उन्नति का विचार रखता है, कर्मफल में अनासक्ति रखता है, लेकिन कर्म में अपनी पूरी कुशलता, पूरी लगन, पूरा मनोयोग वह लगा देता है, ताकि कर्मफल अच्छा से अच्छा निकले और उससे समाज की उन्नति हो। तीसरी ओर वह व्यक्ति है जो कर्मफल में आसक्ति रखता है और उस आसक्ति के कारण वह अच्छा काम करने में सफल है, उसे कर्मफल भी अच्छा मिलता है, परंतु कर्मफल में आसक्ति रखने के कारण वह उस कर्मफल का कोई भी हिस्सा समाज को अर्पण नहीं करना चाहता, समाज के प्रति अपनी आहुति को नहीं देना चाहता। तो कर्मफल में आसक्ति रखने के कारण उसके कर्मफल का उतना अधिक लाभ समाज को नहीं मिल पाता है, जितना कि विद्वान व्यक्ति के कारण कर्मफल में अनासक्त रह करके अपने कर्तव्य को कुशलता पूर्वक निभाने वाले व्यक्ति के कारण समाज का लाभ होता है। चौथी श्रेणी उस व्यक्ति की है जो कर्मफल में भी आसक्ति रखता है, परंतु फिर भी कर्म को कुशलतापूर्वक नहीं निभा लेता, जैसे तैसे कर लेता है, उससे भी समाज का कोई लाभ नहीं हो सकता। तो इन चार श्रेणियों में से केवल जो दूसरी श्रेणी मैंने अभी बताई, या जो भगवान ने बताई कि सूझबूझ वाला, समाज की उन्नति का विचार करने वाला व्यक्ति, और वैसा व्यक्ति जब कुशलतापूर्वक काम का निर्वाह भी करे, तब जो कर्मफल उत्पन्न होगा जिसका एक बड़ा हिस्सा समाज के प्रति प्रत्यार्पित होगा, उससे ही समाज की उन्नति संभव है, लोक संग्रह संभव है, लोगों का अभ्युदय संभव है। और आगे भगवान कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्मसंगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। इसलिए जो समाज की उन्नति का विचार रखते हैं उनके लिए एक और भी दायित्व उनके सम्मुख उपस्थित हो जाता है, और वह दायित्व क्या है कि सामान्य लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न ना करें। जो लोग अपने कर्म के प्रति आसक्ति रखते हैं और कर्म फल के प्रति भी आसक्ति रखते हैं, उन्हें कर्म से विन्मुख करना उचित नहीं है, उनको आत्मतुष्टि की तरफ ले जाने का प्रयास करना उचित नहीं है, बल्कि उनकी कर्म कुशलता को बरकरार रखते हुए उनको कर्म फल की तरफ से अनासक्त करना यही सही काम है, उनके मन में बुद्धि भेद उत्पन्न करना यह सही बात नहीं है। इसलिए जो विद्वान व्यक्ति है, समाज को आगे ले जाना चाहता है, उसके लिए यही उचित है कि वह सामान्य जनों को जोशयेत सर्व कर्माणि सब तरह के काम कुशलता पूर्वक करने के लिए प्रोत्साहित करता रहे, और समाचरण स्वतः भी कुशलता पूर्वक काम करते हुए भी कर्मफल की तरफ समभाव से देखे और इस प्रकार समबुद्धि रखते हुए आचरण करे, तो ऐसा व्यक्ति प्रजाजनों के बीच बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करता। तो मित्रों, आज हम अपनी संस्कृत की पढ़ाई और भगवद्गीता के तीसरे अध्याय की पढ़ाई यहाँ समाप्त करते हैं। भगवद्गीता का यह अध्याय कर्मयोग के नाम से जाना जाता है और इसमें कर्म के विषय में बहुत सुंदर विवेचन भगवान ने किया है। तो हम इसे आगे भी पढ़ते रहेंगे। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।